रूस पूर्वी यूरोप के अन्य भागों में तो एक सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति का विकास नहीं हो सका, किंतु रूस में मस्कोवी शासकों ने इसे उपलब्ध कर लिया। रूस के इतिहास में जो काल यूरोप के प्रारंभिक आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है, वह मंगोलों एवं पीटर महान के उदय के बीच के लगभग 200 वर्षों का काल है। इस काल को कोमास्को शहर के नाम के आधार पर पुकारा जाता है। इसमें मास्को के शासकों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय पाकर अपने राज्य का विस्तार किया था। आधुनिक काल का प्रारंभ होने से पूर्व रूस मंगोलों से त्रस्त रहता था। यूरोप एवं एशिया को विभाजित करने वाले यूराल पर्वत के पश्चिम और पश्चिमी यूरोप से कटा हुआ सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य यूरोपीय राजनीति एवं संस्कृति के संदर्भ में नगण्य था। मस्कोवी के दो प्रसिद्ध जारों ने रूस पर आक्रमण करने वाली जातियों को परास्त करके रूस की सीमाओं को पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत किया। ये जार थे इवान तृतीय अथवा इवान महान 1492 से 1505 एवं इवान चतुर्थ अथवा इवान भयंकर। इवान महान ने सर्वप्रथम तातार प्रभुत्व का अंत किया एवं मस्कोवी निरंकुश साम्राज्य की स्थापना की। उसने नोवगोरद को विजित किया और साथ ही उत्तर व पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया। उसने मध्ययुगीन राजनीतिक केंद्र की पर उसका सच्चा उत्तराधिकारी होने का दावा किया और 1480 में तातारी सत्ता केंद्र गोल्डन हार्डे के प्रति निष्ठा व्यक्त करने से इनकार कर दिया। तातारों के प्रभुत्व ने रूसियों को सैनिक संगठन एवं केंद्रीय निरंकुश शासन की आवश्यकता का अनुभव करा दिया था। संभवतः और भी सरकार तातार प्रभुत्व को उखाड़ कर अपना राज्य विस्तार कर सकने में सक्षम नहीं थी। 1492 में इवान ने वैजंतियाई की राजकुमारी सोफिया से विवाह कर लिया और इस प्रकार वह वैजंतियाई शाही परंपरा का भी उत्तराधिकारी बन गया। उसने ही पहले पहले जार की उपाधि धारण की, जिसका रूसी भाषा में अर्थ है सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतंत्र शासक। इस प्रकार से उसका शासन धर्म शासित राजतंत्र था। उसकी शक्ति का स्रोत भगवान था एवं वह किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी न था। रूस की भूमि पर उसी का स्वामित्व था और समस्त रूसवासी उसके आसामी और सेवक थे। उनके बिना भी वह तो रूस का जार बना रहता, किंतु उसके बिना रूस का अस्तित्व कुछ नहीं था। वैजंतियाई उत्तराधिकार के बल पर वह परंपरागत चर्च का भी संरक्षक था ही। इस नए राजवंश की कई लाभदायक खूबियाँ थीं। यह एक केंद्रीय निरंकुश राज्य था। मास्को विभिन्न व्यापार केंद्रों पर लाभप्रद स्थिति में था तथा बोल्गा डान एवं नीपर तीनों ही नदियों से बहुत दूर नहीं था। इवान महान के उत्तराधिकारी भी योग्य निकले। उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार, कृषि योग्य भूमि के विस्तार और बंदोबस्त की नीति अपनाई। भद्रवर्ग ने जो कृषि के विस्तार के साथ साथ बनी होता जा रहा था, स्वभावतः ही राजतंत्र का साथ दिया। रूसी कुलीन, जिन्हें वोवार कहा जाता था, 16वीं सदी तक आते आते अपनी जागीरों पर पैतृक उत्तराधिकार का अधिकार रखते थे, किंतु यह सामंती व्यवस्था नए मस्कोवी निरंकुश राज्य के साथ मेल नहीं खाती थी। 16वीं शताब्दी में मस्कोवी शासकों ने भू स्वामित्व की एक नई प्रणाली विकसित की, जिसे पोमेस्टी कहा जाता था। इस प्रणाली में जार ही जागीर प्रदान करता था और उसकी शर्त लोक सेवा होती थी। यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि 15-16वीं शताब्दियों में पोलैंड एवं लिथुआनिया में भी सामंतों की शक्तियों एवं स्वतंत्रता में बहुत वृद्धि हुई थी, जिसका एक प्रभाव था शासक की शक्तियों का ह्रास। रूस में मास्कोवी शासकों ने इस प्रवृत्ति को रोक दिया। इवान भयंकर ने सैनिक सेवा प्रणाली को बढ़ावा दिया। उसने रूस में एक अस्थायी सेना की स्थापना की जिसे स्ट्रेल्टसी कहा जाता था। उसने मध्य एवं निम्न वोल्गा पर स्थिति कजान एवं अस्ट्राखान की खान एटिस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पूर्व की ओर विस्तार उसके राज्य की एक विशेषता थी। बोयारों के ऊपर अपनी सत्ता को दृढ़ करने के लिए इवान भयंकर ने अपने सुधार कार्यों में एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक संस्था जेम्स्की सोबर का सहयोग प्राप्त किया। यह राज्य की एक द्विसदनीय सभा थी जिसकी सबसे पहली बैठक 1550 में हुई थी। इसमें भद्रजनों के सभी वर्गों, भद्रवर्गीय व्यापारियों, बोयार ड्यूक नामक अभिजात वर्ग, उच्च पादरियों आदि के प्रतिनिधि थे। इसने एक नई न्याय संहिता एवं स्थानीय प्रशासन की एक नई प्रणाली बनाई। 1560 तक इवान चतुर्थ को यह भय होने लगा था कि बड़े बड़े बोयार उससे विश्वासघात कर रहे थे, अतः उसने उनके विरुद्ध और कड़े कदम उठाए एवं 1564 में बोयारों की शक्ति को सदा के लिए समाप्त करने की दिशा में योजनाबद्ध कदम उठाए। उसने एक नई राजनीतिक पुलिस का निर्माण किया। इसने बोयारों की जागीरें जब्त करके उनका आधार स्वामी भक्ति एवं सरकारी सेवा बनाकर उन्हें पुनर्वितरित किया। साथ ही बोयारों एवं उनके समर्थकों को बड़ी संख्या में निष्कासित कर दिया। राजतंत्र एवं बड़े बड़े कुलीनों के इस संघर्ष में सामान्य जन तटस्थ थे, किंतु युद्ध एवं संघर्ष के परिणामों में से वे बिल्कुल अप्रभावित नहीं रह सकते थे। बहुत बड़ी संख्या में वे साधारण जन कुछ समय पूर्व विजित कजान प्रदेश अथवा निम्न नीपर तथा दून नदी पर स्थित स्वतंत्र कोशाक प्रदेशों में जाकर बसने लगे। यह एक विडंबना थी कि स्वतंत्रता की खोज के लिए उठाए गए इस कदम ने कृषि दास प्रथा के उदय में बड़ी सहायक भूमिका अदा की। मध्य रूस में होने वाले विस्तृत निष्क्रमण ने वहां श्रम की कमी कर दी, जिसका प्रभाव उन छोटे छोटे सेवा अभिधारकों पर पड़ा जिन्हें जार अपने अधिकारियों एवं सैनिक अधिकारियों को इनाम के तौर पर देते थे, क्योंकि बोयारों की पैतृक विरासत ने प्राप्त भूमि मुक्त आसामियों पर इतनी आश्रित नहीं थी। उनमें उनके अपने गुलाम थे। नवोदित सेवा अभिधारकों द्वारा श्रमिकों की कमी की शिकायत करने पर जार ने यह घोषणा करने प्रारंभ की कि एक खास समयावधि में कोई किसान अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएगा। ऐसी पहली घोषणा 1581 में हुई। इस प्रकार 16वीं सदी में, जबकि पश्चिमी यूरोप कृषि दास प्रथा से मुक्ति पा रहा था, रूस में कृषक अधिकाधिक भूमि से संबद्ध होता जा रहा था तथा अधिकाधिक मात्रा में राजा द्वारा भूमि का प्रयोग सेवारत अमीरों को इनाम के रूप में देने के लिए किया जा रहा था। यह प्रक्रिया 18वीं सदी तक चलती रही। इवान भयंकर की मृत्यु के बाद रूसी इतिहास में अव्यवस्था का काल आया, जो 1613 तक चलता रहा, जबकि जेम्स्की सोबर ने रोमानियो वंश के माइकल को सिंहासन पर बैठाया। इस वंश ने रूस पर 20वीं सदी के प्रारंभ तक राज्य किया। इस वंश के 300 वर्षों के शासनकाल में ही रूस प्रशांत महासागर और काला सागर तक पहुंचकर दुनिया सबसे बड़ा देश हो गया। वास्तव में रूस इस महानता की ओर पीटर के शासनकाल में अग्रसर हुआ था। एरिक वंश के अधीन रूस की सीमाएं पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत हो गई थीं, किंतु 16वीं सदी में पुनर्जागरण की जो लहरें पश्चिमी यूरोप में नई चेतना प्रभावित कर रही थी, रूस उन परिवर्तनों से अनभिज्ञ था। रूस में यातायात के साधन नहीं थे। साल में 6 महीने भयंकर ठंड के कारण जीवन निष्प्राण हो जाता था। यूरोप के अन्य देशों से भी रूस का कोई विशेष संबंध नहीं था। एरिक वंश के शासक भी संबंधों के विस्तार में नहीं अपितु सीमाओं के विस्तार में रुचि रखते थे, इसलिए उन शासकों का यूरोप के इतिहास में बहुत महत्व नहीं समझा जाता है। हम यूरोप के कई देशों में होने वाले युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के दौरान युद्धों की भरमार रही। स्वयं यूरोप में ही ऐसे अनेक युद्ध लड़े गए, फ्रांस तथा हैब्सबर्ग वंश के बीच इटली के युद्ध 1494 में आरंभ हुए और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1559 तक चलते रहे। संपूर्ण 17वीं शताब्दी में केवल 7 वर्ष 1610, 1669 से 71, 1680 से 82 ऐसे थे जबकि यूरोपीय राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। कुछ महाशक्तियाँ तो पूरी शताब्दी में से लगभग आधे समय तक युद्धों में उलझी रहीं। मध्य यूरोप 1618 से 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध का क्षेत्र बना रहा, मध्य यूरोप। और यदि हम स्पेन के समुद्र पार के अधिकृत क्षेत्रों को भी गणना में शामिल करें तो स्पेन तो अधिकांश समय युद्धों में ही उलझा रहा। यहाँ यह देखना उपयुक्त होगा कि सामंती एवं निरंकुश राजतंत्रीय युद्धों में पाई जाने वाली समानताएं एवं असमानताएं क्या थीं। हम ऊपर बता चुके हैं कि यद्यपि सामंती समाज में उत्पादन तकनीकें निम्न स्तर की थीं तथा कुलीनों के लिए यह भूमि या उससे अलग उत्पन्न सामंती अधिशेष ही संपत्ति का प्रमुख स्रोत था, फिर भी युद्ध करना आर्थिक दृष्टि से तर्कसंगत था। भूमि के लिए सामंती प्रतिस्पर्धा तथा वस्तु उत्पादन में पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा में जो अंतर है उसे सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। कुलीन वर्ग के पास भूमि का स्वामित्व था और युद्ध उसका व्यवसाय था। उसका सामाजिक पेशा उसकी आर्थिक स्थिति की वह समृद्धि न होकर उसका आंतरिक फलन था। अतः पूंजीवादी प्रतियोगिता का सामान्य माध्यम आर्थिक था और उसकी संरचना विशेष रूप से योगात्मक थी। किसी भी द्वंद्व के दौरान दोनों ही विरोधी दलों का विस्तार एवं उनकी बढ़ोतरी होती रहती थी, क्योंकि निर्मित वस्तुओं के उत्पादन की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि यह विस्तार एक एवं बढ़ोतरी समान रूप से होती थी इसके विपरीत। अतः सामंती स्पर्धा का विशिष्ट माध्यम सैनिक था और उसकी संरचना प्रायः हमेशा ही युद्ध क्षेत्र के उस संघर्ष पर आधारित थी जिसमें जीत या हार का योग प्रायः शून्य होता था और इसी संघर्ष के द्वारा निश्चित भूक्षेत्र जीता अथवा हारा जाता था। चूँकि भूमि तो प्राकृतिक इंजारेदारी है अतः उसे केवल पुनर्विभाजित किया जा सकता है और निश्चित तक बढ़ाया नहीं जा सकता।